महाविद्या का स्थान,
उधर से होकर के कहती थी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर संभाती रहती है।
इसलिए नंद बाबा जिस समय आए थे यहाँ उस समय भी महाविद्या के पास ही में अंबिका वन में वो ठहरे थे जमुना के किनारे, और वहीं पर उनका पैर सर्प एक निकल रहा था, तो इसलिए जमुना उधर में थी। तो इस तरह से लवणासुर का यहाँ पर वध किया गया, उन्होंने मथुरापुरी की नींव डाली। मथनाती इति मथुरा, एक तो मधु से मथुरा, मधुरा मथुरा से मथुरा, और एक मथनाती, मथनाती माने की अपने सुंदर रूप से गुण से जगत का मथन कर देते हैं कृष्ण, इसलिए वो कृष्ण जहाँ पर बढ़ाते हैं उसको मथुरा, इसलिए इसका नाम है मथुरा। वहां पर बस करने के बाद में पूरी को स्थापन किया, पूरी वहां से यहां तक पूरी ऐसे थी। अब उसका स्वरूप कभी इधर कभी उधर, बाढ़ के वजह से उधर का कट जाता है इधर बढ़ जाता है, इधर का कटता है उधर बढ़ जाता है। इस प्रकार से आज मथुरापुरी इधर हो गई। अब देखिए मथुरापुरी अभी यहां आ गई। दंत वक्र के का गेट था, वध करने के बाद में कृष्ण जिस गेट से प्रवेश हो गए मथुरा वालों ने उनका स्वागत किया था। अब वहां पर ये गेट है होली गेट, ये पहले उसी समय का होली गेट, उस समय का है कृष्ण का यहीं पर। उसके बाद के बाद में ब्रजवासी लोग सब यहाँ इकट्ठे थे, मथुरा वाले तो थे नहीं,
मथुरा खाली
खाली था, इसलिए ब्रजवासी लोग सब आकर के यहीं पर भीड़ लगाया। उधर दातिहार पास ही में है, और फिर यहीं से प्रवेश करके और जमुना को पार करके उधर निकल गए। इस तरह से ये बहुत प्राचीन मथुरा है। ध्रुव जी का वैशिष्ट्य क्या है? उन्होंने तपस्या की, उनकी तपस्या ने, तपस्या कहते हैं कि तो तपस्या नहीं आराधना है। कैसे? मंत्र का उन्होंने, महामंत्र का यदि हम अभ्यास करते हैं आराधना तो वैसे मंत्र का है। तपस्या उसको कहते हैं शरीर को कष्ट देने का नाम है तपस्या, जिसमें मंत्र जाप और इष्ट देव की कोई भी कुछ नहीं होती है। शरीर को सुखाना नहीं खाना कष्ट देना ये है तपस्या। ध्रुव जी का ऐसा नहीं है, उसके द्वारा वो मंत्र की सिद्धि के लिए मंत्र का जप कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं मुख से, इसके बाद में धीरे धीरे मन से, मन से बाद में धीरे 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 और होता गया। एक तरह से मन को निग्रहित करके जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान ध्यान से वो मंत्र जप कर रहे हैं, केवल इसी को बिना उद्देश्य के इष्ट देव को रखे हुए नहीं कर रहे, इसलिए ये एक तरह से ये आराधना है। नारद जी ने जो किया था वो आराधना है, ओम नमो नारदिका भगवते इत्यादि, मंत्र प्रधान इसमें है इसलिए आराधना है। कोई भी सकाम व्यक्ति, कोई भी सकाम व्यक्ति यदि शंकर इत्यादि देवताओं की, दुर्गा की, गणेश की आराधना करता है तो वो दे देते हैं, और दे देने के बाद में उस वैभव को पा सके या तो स्वर्ग को पा ले या यहां पर, फिर वैभव के नष्ट होने के बाद में फिर वैसा ही स्थिति में आ जाएगा, या स्वर्ग जाएगा वहां से फिर आएगा फिर मनुष्य लोक में घूमेगा। ये तो है देवताओं की आराधना। और यदि कोई कामना से ही भगवान की आराधना करता है, नारायण का, कृष्ण का, विष्णु का या किसी भगवत तत्व का, तो भगवान उसकी कामना को भी पूर्ण कर देते हैं, और कामना पूर्ण होने के बाद में उसकी आकांक्षा को सब पूर्ण से दूर करके भक्ति दे करके और उसको अपनी गति देते हैं, मुक्ति नहीं देते उनको, किंतु कामनाओं को पूर्ण कराएंगे। कोई भी सकाम भक्त हो, जैसे उदाहरण के लिए बतलाया ध्रुव, ध्रुव जी के अंदर में कामना, मैं पैतृक राज्य हमारे पिता ने नहीं दिया, इसलिए पैतृक राज्य हमको मिले इसलिए भगवान के शरणापन्न हुए, अपनी मैया के गुरु मान लीजिए मैया, मैया के आदेश अनुसार में उन्होंने श्री हरि की आराधना की। किस लिए? राज्य नहीं उनको मिला था। भगवान ने दर्शन दिए, वो भी नारद जी की कृपा से दिया। यदि वो खुद ही खुद कुछ आराधना करते तो नहीं होता, बहुत विलंब लगता। किंतु चूंकि नारद जी ने उनको दीक्षित करके और मंत्र दिया था और उस मंत्र के साधन का ये सब बदला था जो कैसे होगा, इसलिए उन्होंने 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्राप्त किया। कठोर आराधना बिना खाए ये जैसे ये करना। भगवान अंत समय में उनको दर्शन दे करके उनके अंदर में जो भोग की कामना थी, राज्य भोग की, वो तिरोहित करा दिया, नष्ट कर दिया। अब कामना नहीं रही, किंतु 36,000 वर्ष राज्य भोग करने का जो वर दे दिया वो तो भगवान के वचन अमोघ है, वो तो भोगना पड़े। अब रोने दिल दिल बिलाने लगे, काचन विचिन्नति दिव्य रत्नम स्वामी कृता तो ब्रह्म ने जान। अब ब्रह्म को तो जरूरत नहीं है, किंतु वर्त उन्होंने दे दिए, अब क्या है? इसलिए प्रभु ने कहा कि 36,000 वर्ष तक दिव्य ये समस्त पृथ्वी का राज्य भोग। कामना की थी थोड़ी, किंतु कामना कर दी पूरी बहुत विशाल, और बहुत दिनों के लिए। अब ये बहुत दिन ही उनके लिए बहुत ही दुख का कारण बन गया, इसलिए भगवान ने उनकी कामना पूर्ण कर दी और उनको सुंदर गति दे दी। सुंदर गति क्या दिया? ध्रुव पद दिया। ध्रुव नित्य वर्तमान रहने वाला, कभी ध्वंस नहीं होना, वो ध्रुव पद है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में एक ध्रुव पद है, उस चीज को उन्होंने दिया। भगवान का लीला विलास वैसे कुछ नहीं है, किंतु वहां पर मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति तो ही है, मुक्ति के बाद भी भगवान का विशेष लीला विलास नहीं है, किंतु उस स्थान पर मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है, ऐसी एक स्थिति है, उसको उन्होंने ध्रुव को दे दिया। अब पीछे से क्या हुआ, अभी तक उसी लोक में है ना, क्या कर रहे हैं, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। ये क्या हुआ? यदि नारद जी उस लोक में पहुंच गए हों और उनसे भेंट यदि हो गया हो तो कुछ हो सकता है कि कुछ हो। खैर, ये सकाम भक्ति करने से भी भगवान उसके ऊपर में कृपा करके उसकी कामना को पूर्ण करके अंत में उसकी गति कर देते हैं, दे देते हैं। तो हो सकता है कि उनके बाद भी कितने महाप्रलय हो गए हों। ध्रुव अभी अभी यही है कि पहले वाले हैं, इसका भी कोई पता नहीं। तो जैसे हो, ये बात है कि यदि कोई सकाम भक्ति भी करता है और प्रभु की करता है तो प्रभु उसकी कामना को पूर्ण करके और उसको फिर सुंदर गति देते हैं, अहत की भक्ति दे सकते हैं। किंतु भक्त लोग प्रारंभ से ही किसी प्रकार की कामना नहीं करेंगे, किंतु फिर भी हम लोग नहीं कामना तो भी है, और इस तरह तरह की कामना वासना है, इसीलिए भक्ति अभी हृदय में प्रकाशित हो। जब संपूर्ण रूप से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, कोई कामना नहीं रह जाएगी, तब एक स्थिति है। और यदि साधन के समय में ही संसार की सारी कामनाओं को दूर करके कृष्ण की एकनिष्ठ भक्ति यदि चाहते हैं और उसमें भी महाप्रभु के अनुगत्य में कोई एक विशेष भक्ति में यदि लोभ हो गया और तब साधन भजन करते हैं तो वो पहले की स्थिति में कुछ सकाम होने में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सत्संग के द्वारा उसका परिमार्जन हो जाता है। रहेगा तो सब काम तो रहेगी है पहले, किंतु धीरे धीरे साधु संग जितने करते चले जाएंगे, शास्त्रों का आलोचना हम करते चले जाएंगे, धीरे धीरे ये सब कामनाएं दूर हो जाएंगी और उन भक्तों के माध्यम से वैधि भक्ति राजानुराग भक्ति जैसा जिसका अधिकार है उसके अनुसार में धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज जी का इनसे ये वैशिष्ट है, ध्रुव में तो काम था, कामनाएं थी, उसको प्राप्त किया 36,000 वर्ष के बाद में या भगवान के दर्शन से उनकी सारी कामनाएं दूर हो गई। किंतु प्रहलाद महाराज जी का क्या था, प्रारंभ से ही कोई कामना नहीं थी, कोई भी कामना नहीं थी। परमार्थिक क्या कामना थी इसका उसमें उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु संसारी कामना नहीं थी। अब प्रभु को, अपने प्रभु को सर्वत्र वो देखते थे और प्रभु में सबको देखते थे, ये मां भागवत के लक्षण है। ध्रुव जी का ऐसा नहीं था प्रारंभ अवस्था, पीछे से कुछ महाभागवत के भाव आए हैं, किंतु जब तक वो क्या लड़ाई चल रही थी ना, जिनको जक्षों ने जो मारा था इनके भाई को उत्तम को
मारा था,
उनके विरुद्ध उन्होंने आक्रमण किया, सबको मारने लगे। ये तो महाभागवत का ये नहीं है, तब उनके किसने
कुबेर जी
आकर के उनको समझाए, अरे तुम तो भगवत भक्त हो, तुमको किसे विरोध। उपदेश देने के बाद में इनको बड़ी ग्लानि हुई, अभी तब तक महाभागवत नहीं है। स्वामी मनु शायद कुबेर जी थे, जरूर होंगे, क्योंकि जफ्फा के तो वही राजा थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, मनु जी को कहा होगा, फिर वो उनको लेकर के वो आए। तो तब तक वो सबने प्रभु को और प्रभु को सबने नहीं देख रहे थे, हाँ किंतु मार रहे थे ऐसे। तब उन लोगों ने समझाया इनको गया, प्रहलाद महाराज जी को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो विश्व को समझाएंगे, इसलिए उनका प्रारंभ से ही स्तर बहुत ऊंचा था प्रहलाद महाराज जी का। बल्कि प्रहलाद महाराज जी को भगवान स्वयं उनसे युद्ध किया था, प्रहलाद महाराज से युद्ध किया था,
प्रहलाद महाराज
भगवान स्वयं आकर के किरात देश में उनसे लड़ाई किया था। और जब इनको मालूम है अरे ये हमारे सामने तो कोई विश्व का ठहर नहीं सकता युद्ध में, तो ये कौन है, और कौन सा गला, हमने जो गला दिया था, माला दी थी, और वही माला हमारे गले में, उनके गले में कैसे देख रहे हैं। उन्होंने सिंह भगवान को या इष्ट देव को माला दी और उसके बाद में युद्ध कर रहे थे, और देखा जी जो लड़ रहा था किरात वही माला इस कले में, ये माला जरूर उन्हीं की है तो यही होगी। बस हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना किया, वो हंस करके उनके सामने इस तरह के रूप में खड़े हो गए। ये ध्रुव के लिए संभव नहीं, उस उनके लिए है, किंतु फिर भी भक्ति का कुछ तारतम्य है। इनके अंदर में सांसारिक कोई वासना नहीं है, किंतु भगवान की नौनवायमान रूप में किसी खास व्यक्ति के अनुगत्य में सेवा की अभी भावना नहीं जगी है। महाभागवत है, नहीं समझ में आया ना, जैसे हम लोग अभी थर्ड क्लास के कनिष्ठ भावी अधिकारी नहीं है, किंतु अभी से एक गोल बना लिया है अपना जीवन का, हम उनके अनुगत्य में हम भजन करें, हम कृष्ण का कोई परिकर नहीं होना चाहते, हम श्रीमती राधिका जी की सेवा करना चाहते। एक प्रारंभ से ही हो गया, बढ़ता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा। ऐसा प्रहलाद महाराज जी के जीवन में कुछ ऐसा खास भाव नहीं मालूम पड़ता, किंतु जो कुछ न कुछ होगा प्रकाश नहीं किया, अब महाप्रभु के द्वारा अपना स्वरूप प्रकाश कराया, तब वो दोनों गले में मिले और तब उनकी लीलाएं चलने लगी।
हनुमान जी जब तक किष्किंधा नहीं गए हैं, उनकी सीता जी की चोरी के पश्चात में किष्किंधा पहुंचे हैं, खोजते 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 वहां पर हनुमान जी उनको मिले हैं, खड़ंग पहने हुए ब्राह्मण के वेश में। वही किष्किंधा उसी को कहते हैं, और वहीं पर दोनों में वार्तालाप हुई। थोड़े शब्दों में, पांडित्यपूर्ण भाषा में, लालित्यपूर्ण भाषा में, सुंदर अर्थ अलंकार युक्त भाषा में उनसे बातचीत किया। रामचंद्र जी उनके इन सब बातों को सुन करके बड़े प्रसन्न, और थोड़ी देर में ही वो अपने रूप में अवस्थित हो गए। बस ये जो मिलन हुआ और वहीं से उनकी सेवा आरंभ हो गई। अब तक कैसी कैसे उन्होंने सेवा की, सेवा करने पर भी इसमें कुछ अंतर था। अंतर क्या? मर्यादा, अथवा जिसको कहते हैं क्या, मर्यादा ही मर्यादा, राम के प्रति मर्यादा ही उनकी सेवा में कुछ बाधक बन गई। ऐश्वर्य भाव जो कि क्रमशः पांडवों में वो लुप्त था, ऐश्वर्य भाव आने पर संकुचित हो जाते हैं, और नहीं तो गले में मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, साला बहनोई भाई ये सब के रिलेशन उनके साथ में कर दिए। ये सेवा की परिपाटी, और उद्धव जी का इनसे भी कुछ बढ़कर। कोई काम हुआ तो उन्हीं को ब्रज में भेजा, पांडवों को में से किसी को, अर्जुन को या किसी को नहीं भेजे। और इसके बाद में गोपियां ही हैं, सखा लोग हैं और लोग सब हैं। ये सब ऐसे ही भजन में उत्कर्ष देखा जाता है, सेवा में उत्कर्ष देखा जाता है। इसलिए कामनायुक्त प्रारंभिक अवस्था में ये ध्रुव जी का चरित्र उन्होंने वर्णन किया। तत्पश्चात हम लोग इसलिए उसमें कोई कामना वासना नहीं है संसार, और सर्वत्र ही वो भगवत दर्शन करते थे, और सब में भगवत दर्शन और भगवान में भी जीवों का दर्शन, ये महाभारत का। कोई भी संसारी कामना वास नहीं, और शरणागति की हब है, मारो भी राख भी जो इच्छा, यही शरणागति है, उनमें अंतिम हद तक शरणागति है। इसलिए उनके चरित्र को उन्होंने लिया, ये भक्ति का प्लेटफॉर्म। किंतु ऐसा रहने पर भी यदि रसिक वैष्णवों का, महाप्रभु के भक्तों का संग यदि न हो तो बस उतना ही रह करके सीमित, बस वैकुंठीय भक्ति इसको कह सकते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते। किंतु उसी मधुबन में कृष्ण का सखाओं का साथ में जो व्यवहार है, गोपियों के साथ में है, यशोदा मैया तीनों का वहां पर संबंध, मैया मैं नहीं माखन खा, यशोदा जी के साथ उनको कलेवा वहां पर भेजती हूं, सब समय उनकी देख रेख करती हूं। वन में जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं, यशोदा मैया उनको कितने लाड प्यार करती हैं, और सखा लोगों के साथ में वहां पर खेलने कैसा संबंध मधुर, और उसमें भी गोप बालिकाओं का, उनके साथ में कृष्ण का, ये सब लीलाएं सब मधुबन में हुई। यदि वृंदावन में रास हुआ, वृंदावन में रहते ही तो रास हुआ, तो मधुबन कौन सा दूर है, तो उस समय वो भी गोपियों के साथ में मधुर मिलन इत्यादि का भी प्रसंग, यही कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ सुस्वादु मधु है, जिसको गोपियों ने आस्वादन किया, कृष्ण ने भी आस्वादन। इस तरह से हम लोग वहां से कुमुद वन होते, कुमुद वन को पहले प्रणाम किया, इसके गए हम लोग बहुला वन, और संप्रदाय के लोग बहुला वन का उस रूप में महत्व नहीं देते जिस रूप में गौड़ीय वैष्णव लोग देते हैं। वो लोग गाय का जो संबंध है ना, बस उसी की प्रधानता देकर के रह जाते हैं, और गो सेवा का प्राधान्य देते। कृष्ण ने गोचारण किया, और दास दक्षिण, इसमें उनका बस वही तक महत्व है। और इनका महत्व किसमें है? प्रेम पूर्वक गोप गोपियों के साथ में मिलन का ये वहां पर भाव है। इसलिए बहुला बहु प्रेम लाती, ये जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रेम में आविष्ट हो गए, नित्यानंद प्रभु जी गए और गोस्वामी लोग वहां पर गए, हमारे रूप सनातन भी गए होंगे, इस तरह से हम लोग भी गुरु जी के साथ में गए, फिर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां पर गए, इस तरह से ही आशा बन। जब द्वादश वनों में एक प्रधान वन है, जरूर इसका महत्व कुछ है, और वो भी वृंदावन के निकट है, प्राय गाय कराने के लिए उस वन में जा रहे, काशी वो राल ग्राम है, वहीं पर राधिका जी के पिताजी रहते थे।
क्या
सखी
बताया?
हाँ ठीक है, वो हमने कहीं से शास्त्र से देख करके पद्मपुराण झूठ का नाम बोल दिया, वो थोड़ा सा करा जैसे हम नाम बतला रहे हैं, कभी देखा नहीं होगा। हम लोगों ने तो देखा भी है, कोई थोड़ा सा पढ़ा भी है, उनको कभी बाप के जन्म में कभी नहीं पढ़ा होगा, न देखा होगा न सुना होगा। तो क्या वो करा था ना, जैसे चारों संप्रदाय के लोग आए और दूध पिलाया उनको, हाँ कृष्ण के साथ में रास करने लगे, वो चारू आचार्य कभी ऐसा होता है? हाँ, यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, उनके सामने में रास हो रहा है, या और सब लोग हैं, चंद्रावली जी आ रहे हैं राधा जी का श्रृंगार कर, ये सब झूठ मुठका, ये सब किम बदंती, ऐसे लोग असिद्धांतिक लोग ऐसा कहा, एक उत्साह देने के लिए ब्रज में बास कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा, वास्तविक उसमें कोई भी तथ्य नहीं, हमको ये देखना है कि कृष्ण की विहार स्थली है, गोपियों की विहार स्थली है, बहुत ही रमणीय स्थल है, सरोवर भी बड़ा सुंदर, ये सब मान लो कीजिए तो वो सिंह गाय उसका बछड़ा सभी पत्थर हो गए, इसे हम लोगों का लेना देना क्या है, या पत्थर हो गए या सोना हो गए या कुछ हो गया, तो इसे क्या लेना देना हमारा, प्रेम से कोई संबंध नहीं। बेकार तब ये ठीक है, महाप्रभु जी उसी वन में सुखसारी का द्वंद श्रवण किया। अब हम लोग थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत में, कल हम लोग यहां से निकल करके पद्मनाभ जी का दर्शन करेंगे, पद्मनाभ जी का दर्शन करके काशी ही में नीचे कृष्ण बराह और श्वेत बराह, उनके संबंध में आज कुछ कुछ बतलाया गया, शत्रुघ्न जी को ये रामचंद्र जी ने दिए उनकी प्रार्थना से, उन्होंने कहा जैसे मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप अनुग्रह करके ये जो विग्रह आप लंका से ले आए हैं, जिसको रावण पूजा करता था और उसके पहले कुबेर जी पूजा करते थे, और कुबेर जी को ब्रह्मा जी ने जो दिया था वो बहुत प्राचीन विग्रह, हम इसको ले जाएंगे, पहले ब्रह्मा जी पूजा करते थे, और ब्रह्मा जी के नाक से तो वो प्रकट हुए थे, और फिर उनके पास में आए हैं छोटा रूप धारण कर, तो वही बराह जी जो की पूजा ब्रह्मा जी करते थे, उन्होंने कुबेर को दे दिया और सोने की लंका उनको दे दिया, और इसके बाद में फिर उनसे छीन लिए, लंका भी छीन लिया, वैभव छीन लिया, इनको भी छीन लिया, वो पूजा करता था, इसके बाद में उनसे विभीषण ने दिया, विभीषण ने रामचंद्र जी को दे दिया, रामचंद्र जी दे करके अयोध्या में आए, अयोध्या में रामचंद्र जी से शत्रुघ्न जी ने मांगा, वो ले आकर के फिर ये मथुरा में उनकी स्थापना की, लवणासुर को मारने के बाद में, तब से ये कृष्ण बराह है, अश्वेत बराह और दूसरे कल्प के हैं, और वो यहां पर उन्होंने पृथ्वी को अपने दांत से उठाया था, एक ने वेद का उद्धार किया था, एक पृथ्वी नीचे रसातल में चली गई थी तब उसको उठाया था, विभिन्न कल्पों में विभिन्न रूप से भगवान लीलाएं करते हैं, हम लोग वहां पर जाएंगे और वहां से होते हुए द्वारकाधीश
वताश्रम
टीला विश्राम घाट पर हो ही गया है, अब विश्राम घाट जाने की जरूरत नहीं। नहीं वो जब जन्मभूमि जाएंगे, जन्मभूमि से होकर से कठिन दर्श आए। फिर परसों हम लोग परसों पे जाना है ना, परसों हम लोग जाएंगे गोवर्धन में, जाते समय में मधु मधु कुंड ना क्या नाम है, नहीं पहले पढ़ता है वो
याद नहीं आ रहा
के बाद में चंद्रशोर, चंद्रशोर के बाद ही हम लोग गोवर्धन में पहुंचे और फिर दूसरे दिन हम लोग परिक्रमा। अभी हम लोग चैतन्य चैतामित पाठ कर रहे थे, आदि चतुर्थ बतलाया था कृष्ण तीन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राधा जी का भाव और ऊपर से उनका उनके अंग कांति को लेकर के तीन आकांक्षाओं को पूर्ण किया, उसी को कृष्णदास का विराट भूषण अविशेष रूप से यहां पर वर्णन करते हैं। हमने ये बतलाया था इसमें, हमने बतलाया था बातासु चित सर्वरी इत्यादि की हमने व्याख्या की थी, रति करा प्रबल भाया राधिका बीराकुंज तलोचना ब्रचन अग्रे सखी नाम, इस सब की व्याख्या हमने कर दी और कस्मात वृंदे इत्यादि भी, और इसके बाद में विभुरपि कलयन इसको भी हमने समाप्त किया क्या व्याख्या। अब कहते हैं ऐसा जो प्रेम है जो कि बढ़ने का स्थान नहीं है तभी वो बढ़ता है, कहां पर है वो प्रेम, कहां है राधा जी के हृदय में, स्थान नहीं है बढ़ने का किंतु फिर भी नित्य नव नवायमान हो रहा है। कृष्ण का सौंदर्य भी वैसे ही बढ़ने का स्थान नहीं किंतु प्रेम की नजरों में वो नित्य नवायमान। एक काला सा भी लड़का मैया के गोदी में स्नेह से जब उसको स्नेह करती है तो वही बच्चा उसके लिए परम सुंदर और नया नवायमान, तो कृष्ण के लिए तो बात ही क्या है। तो ये जहां पर प्रेम नहीं होता है उस समय में नए नए रूपों में उसको नहीं देखा जाता, इसलिए श्रीमती राधिका में जितने भी अस्त्र हैं उस समस्त अस्त्रों से अधिक प्रेम है, इसलिए कृष्ण को नित्य नवायमान के रूप में देखती है। बढ़ने का स्थान नहीं है किंतु ये बढ़ता है कौन स्थिति में, मादानाख्य भाव में, एक ऐसा भाव है विरह में मिलन, मिलन में विरह, ये दोनों की अनुभूति अपनी परम काष्ठा तक वो प्रतीत कराता है और उसी में वो बढ़ता रहता है, बढ़ने का स्थान नहीं तभी वो बढ़ता है। ये कौन देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, हम लोग थोड़े देखेंगे, कृष्ण देख रहे हैं। सही प्रेम आराधिका परम आश्रय, ऐसा जो प्रेम है उसका आश्रय है कृष्ण राधिका जी और विषय है कृष्ण, विषय जातीय सुख अमर आस्वाद, विषय जातीय जो सुख है मुझे इसका आस्वाद है, सब जितने भी रस हैं उसके विषय कृष्ण है, इसलिए वो सब रसों का आस्वादन कृष्ण करते हैं, सखाओं के प्रेम का आस्वादन करते हैं कृष्ण। यशोदा मैया और नंद बाबा और ब्रज के जितने भी माता पिता स्थानीय गुरुजन हैं उनके प्रेम का आस्वादन नए नए रूपों में वो करते हैं। यशोदा जी का नंद बाबा जी का प्रेम वात्सल्य का है किंतु इसमें कोई अंतर है कि नहीं, वैशिष्ट्य है कि नहीं दोनों के प्रेम में, यशोदा जी का प्रेम अधिक कृष्ण आस्वादन करें, जितने खुल करके यशोदा मैया से मिलेंगे उतना नंद बाबा से नहीं मिलेंगे, क्यों यशोदा जी में कुछ नंद बाबा से भी अधिक प्रीति है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है उसको अपने गर्भ से, इसलिए यशोदा मैया का प्रेम। और दूसरे पास पड़ोस के जितने भी मैया की उम्र वाली या वैसे भाव वाली है, उनका में भी प्रेम है, उनका भी स्तन आस्वादन किया कृष्ण ने, उनका प्रेम आस्वादन। ये तरह तरह एक ही नहीं, आम मीठा है और पपीता भी मीठा है, गुड़ भी मीठी है, चीनी भी मीठी है, और क्या मीठी में
रसगुल्ला,
मधु भी मीठी है, रसगुल्ला भी मीठा है, गुड़ भी मीठा है, सब एक ही तरह का है। कोई किसी का टेस्ट किसी एक से मिलता है? अच्छा, मिश्री भी एक तरह की होती है ना अलग अलग तरह की? दालजी की मिश्री कैसी होती है? सफेद और एकदम शीतोपल
जैसी,
कांच जैसा है ना, वो कैसी है? और मिश्री सब एक होगा, गुड़ भी एक तरह का होता है, एक एक आदमी गुड़ बनाता है, वो अलग अलग तरह का होगा, उसमें स्वाद भी अलग अलग का। एक आदमी बनाएगा एक बार गुड़ और फिर दूसरी बार उसमें भी तारतम्य हो जाएगा। जैसे एक पेड़ की लाखों पत्तियां लाखों प्रकार की हैं, ऐसे ही प्रेम कृष्ण सबका आस्वादन करते हैं। गोपियां कोटि कोटि हैं, उनका प्रेम सब एक समान मधुर प्रेम है, किंतु सबका अपना अपना एक वैशिष्ट है। कृष्ण ही सबका आस्वादन करते हैं, किंतु वो जो कोटि कोटि गोपियां हैं और कृष्ण को जिस रूप में आस्वादन करती हैं, सखा आस्वादन करते हैं, यशोदा मैया उनके प्रेम का आस्वादन करती हैं, उनका आस्वादन जानते हैं कि मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है स्तन देकर, किंतु कैसी प्रसन्नता होती है इसका वो था नहीं पाए। विशेष करके अंतिम सीमा जो श्रीमती राधिका जी है, उनके प्रेम की सीमा कृष्ण को नहीं लग था नहीं लगा पाते। क्यों? उनके अंदर में वो मदनक भाव नहीं है। है भी तो मदनक भाव दो प्रकार का, एक आश्रय जाति, एक विषय जाति, कृष्ण में विषय जाति हो सकता है, नहीं कहने से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो पूर्ण नहीं तप रहे, इसलिए हो सकता है, किंतु विषय जाति आश्रय जाति नहीं। अब उस कमी को फिल कर रहे हैं, इसलिए इसको पूरा करने के लिए राधा भाव की जरूरत है। विषय जाति सुख अमार आस्वाद अमाहलते कोटि गुण आश्रय अहला, हमारा जितना आनंद सखाओं के साथ में होता है उसे कोटि गुण सखाओं का आनंद होता है। गोपियों को देख करके हमारा जितना आनंद होता है, उनके साथ में क्रीड़ा करके जो होता है, उसे कोटि गुण आनंद होता है। किसको? उन गोपियों को, उनमें भी राधिका जी को अधिक होता है। आश्रय जाति सुख पाई ते मंदा, आश्रय जाति सुख पाने की लालसा होती है। जत्न आस्वादित है नारी, मैं जत्न करता हूं किंतु नहीं हो पाता, बहुत चेष्टा करता हूं किंतु नहीं, क्योंकि वो ऐसा भाव ही नहीं है। यदि वो भाव ले आए, इसलिए राधा जी का हृदय चोरी किया, उनके भाव को चोरी किया। कितना बजा छो नारी की कर उपाय, मैं क्या उपाय करूं, क्या करूं, कैसे आस्वादन देखते हैं। राधा कृष्ण दोनों हैं, देखते हैं कि हमसे अधिक खुश हैं राधा जी, बहुत अधिक आनंदित हो रहे। क्यों? जब तक उनके भाव नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। कभी यदि यही प्रेम आश्रय कभी सही प्रेमानंद अनुभव है, यदि इस प्रेम का मैं कभी आश्रय बन सका, राधा जी के भाव हमारे अंदर यदि आ सके, तब तो संभव है, अन्यथा संभव नहीं। इसलिए एक चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी, वो परम कौतुकी है, चिंता किया उन्होंने। हृदय बढ़े प्रेम लोग धक धकी, धक धकी मैंने क्या, थोड़ा दौड़ करके आओ जोर से, अच्छा मत दौड़ो, कोई एकदम घर में चोर आ गया, डकैत आ गया, कैसा होगा?
वो जो टेंशन हो जाना,
यदि कोई अत्यंत प्रेमी व्यक्ति आ गए तो भी धक धक करे। धक में, धक धक में दो बातें, धड़कन बढ़ जाती है तब तो धक, और नहीं तो आप धक धक करके जल रही है, धधक रही है ना। धधक माने धक 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 धक, माने क्या, कांपती ही उठ रही है। तो कृष्ण के हृदय में ऐसे ही धक धक ही लगी। राधा जी का भाव ही ऐसा है कि इनके प्रेम में धक धक ही लगा, कैसे पाऊं, कैसे हमारे हृदय में ऐसा प्रेम हो जो हमको जैसा ये देखती है प्रेम से मैं भी ऐसे ही चीज को समझ सकूं। एक सुना आर लो, ये क्या बतलाया, ये राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, ये यहां तक हुआ। राधा या प्रणय महिमा के दृश्य, ये पहला हुआ। एक सुना, एक तो एक ये हुआ, आर सुना आर लोभेर प्रकार, आर सुना आर लोभेर। और जो दूसरा जो कारण है उसको सुनो, पहले वाला आप समाप्त, इसलिए सुनो में एक में मत लगा, सुनो एक ऐसा नहीं, यही एक अता पर सुनो आर लोभेर, दूसरा जो लोभ का कारण। दूसरा क्या है,
कृष्ण समुद्री
महिमा की दृशा, राधा या प्रणय महिमा की दृशो व अनया एव अस्वादो जिनाद्भुत मधुरिमा की दृशो व मदीय, मदीय को बात दे दो, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करण विचार। कृष्ण अपना माधुर्य देखते हैं, क्या माधुर्य, रूप, रूप का माधुर्य, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, लीला या लीला परिकर माधुरी, ये चार माधुरियों को देख करके कृष्ण विचार कर रहे हैं। राम इत्यादि तो बांसुरी बजाते नहीं, द्वारकाधीश तो बजाएंगे नहीं, उनकी माधुरी को सुन करके कभी कभी देखते हैं कि गोपियों का कैसा भाव हो जाता है, और कभी कभी बजाते बजाते उन्हीं के कानों में जब आती है तो अपने आप मुग्ध हो जाते हैं। कृष्ण मधुर हैं, किंतु जहीं दर्पण में प्रतिबिंब में या विशेष करके द्वारका में वो क्या लीला हुई थी,
गंधर्व जो चित्र से उन्होंने किया था,
क्या उसको कहते हैं,
नव
वृंदावन की लीला, उसमें उन्होंने देखा अपने मणि के स्तंभ में, उस समय देखा विस्मित हो गए। ललित पाद हमें इसका वर्णन किया गया, तो वही कृष्ण का माधुर्य कब देखा, जबकि बलदेव जी ने उनको हाथों में बंसी दे दी, सोने का मुकुट हटा दिया ब्रह्मा जी के कहने से, और उसमें मोर मुकुट दे दिया, और ब्रज जैसे ही उनके कपड़े लत्ते सब पहना दिया, और हाथों में भी बांसुरी दे दी, और बलदेव के द्वारा उनको उठाया, और बलदेव लजाते कृष्ण लजाते लजाते उठे, और यशोदा जी के हाथ से उन्होंने वो लिया, और लेने के बाद मक्खन लजाते लजाते, जो मैया हमको ऐसे देर से सोते हुए देख करके कुछ ऐसे स्तंभित हो गई है, रोहिणी मैया जी ने उनको आदर जात में कुछ किया, और वहां से जब गोपियों को देखा तो कृष्ण का रूप एकदम बदल गया, एकदम ब्रज का भाव आ गया। उस समय में कैसे चलते हैं, अंगभंगी कैसे होती है, उनके तरफ में गोपियों के तरफ में कैसे देखते हैं, उसमें प्रतिबिंब उन्होंने देखा, और देखकर के ओहो मेरी माधुरी ऐसी है, ये जामोन्ती सप्तभामा रुक्मिणी प्रभृति सप्तभामा एकदम पागल हो गई, यहां तक कि पद्मा बूढ़ी वो बूढ़ा सूखा हुआ पेड़ में भी रस आ गया, और वही पकड़ने के लिए दौड़ी, देख करके कृष्ण एकदम चमत्कृत हो गए। थोड़ी देर के बाद में जब उनको पता चला, समुद्र को देखा, बलदेव जी जब हंसने लगे तो देखा, अरे ये तो वृंदावन नहीं है, गाय कहां है, ये तो पुतलियां हैं, अरे ये तो गोपियां नहीं, ये तो मूर्तियां हैं, कहां है हम, यहां पर समुद्र कहां से वृंदावन में आ गया, तो ये वृंदावन ही तो क्या है। धीरे धीरे बलदेव प्रभु जी ने हंस करके ये सब थोड़ी सी बातें, तो उस समय की ये बात है। और परकलित पूर्वम कश्चमाकारकारी स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पूर अयम अहमपि हंत प्रेक्षत जंगलुब्ध चेता सर्वसमम उपभोक्तम कामये राधिके। राधिका की जैसी ललता होती है कृष्ण की इस रूप माधुरी को, वेणु माधुरी को, लीला माधुरी को, ये सब देख करके वो खुद ही चमत्कृत होकर के राधिका जैसे आस्वादन करती हैं, ऐसे उनके अंदर में लालसा, ये मदनक्य भाव का लोभ उनके प्रति है, राधिका जैसा भाव हमारे अंदर में आए, यही दूसरा कारण है किसी का दूसरा लोभ है। अनंत अद्भुत पूर्ण मोर माधुरीमा, अद्भुत अद्भुत माने अ न भूत भविष्यति इत्यादि, जो कभी नहीं हुई हो वो होता है अद्भुत, जो राम इत्यादि किसी भी रूप में जैसा नहीं हुआ हो। और अनंत, एक ही लीला माधुरी का हम तो ये भी वर्णन किया, कितनी लाखों कोटि उनकी बात होता है, केवल राशि उनका विलास नहीं है, भागवत में सब का वर्णन नहीं किया, रूप गोस्वामी के आदेशानुसार और उनके अनुगमन में कृष्णदास गोस्वामी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत में कुछ कुछ भावों को, लीलाओं को उसमें प्रकट किया है, जो उनके भाव हृदय में सब उत्थित हुए समाधि में। भागवत में तो भाई थोड़ी सी एक रास लीला का वर्णन करके और गोपियों का उद्धव से मिलन के समय में भ्रमर गीता गोपी गीत ये सब का केवल वेणु गीत का वर्णन किया और सब लीलाओं का नहीं। अनंत ऐसी लीलाएं हैं पूर्ण, और वो पूर्ण है मोर माधुरी मा, बड़ी माधुरी मा, ये सब त्रिजगत इहार के हो नहीं पायस की मा, तीनों जगतों में कोई भी इसकी सीमा नहीं पा सकता। त्रिजगत इस तरह से यहां का तीन जगत भूर्व स्वः इत्यादि अथवा मत्तलोक पाताल लोक ब्रह्म इत्यादि अथवा त्रिजगत वैकुंठ और उधर में गोलोक और उधर में वृंदावन अथवा मथुरा द्वारका वृंदावन, कोई भी पार नहीं पाता त्रिजगत यहाँ के हो नहीं पाए। नारद इत्यादि भी नहीं सीमा पाते हैं, उद्धव भी सीमा नहीं पाते हैं, कोई भी अब्रज वाले तो जानते ही नहीं है उनकी सीमा करना, वो तो उसी में इतने मुक्त है कि ये विचार वो नहीं कुछ कर पाते, विचार ही नहीं करते है? तो इस तरह से कोई भी सीमा नहीं पाता। एक प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली अमार माधुर्यामृत आस्वादेश सकत, वो जो अनंत पूर्ण अद्भुत जितनी भी हमारी विचित्रताएं मधुरिमाएं हैं, अकेली राधा जी ही ऐसी हैं जो करती हैं। ललिता जी सबका साधन करेंगे कि नहीं करेंगे, गड़बड़ है नहीं होगा, क्योंकि वो मदनाख्य भाव में नहीं है, नहीं कर सकते। हाँ समझेंगे बुझेंगे निकट से वो देखेंगे, और जो हैं उन नीचे वाली जो हैं उनका तो बात ही क्या, यशोदा मैया बस अनुराग कर सखा लोग, कुछ लोग हैं वो राग तक और कुछ लोग अनुराग तक पहुंचे, इसी तरह से सभी का है, इसलिए कोई भी नहीं पूरा कर सकता, किंतु अकेली जो श्रीमती राधिका है वो सब भाव इनमें है परिपूर्ण रूप से, इसलिए उनका स्वादन कर सकता, सभी कोई दूसरा नहीं कर सकता। जगति निर्मल राधार सब प्रेम दर्पण, उनका प्रेम का दर्पण, कृष्ण का प्रेम उसमें प्रतिबिंबित होगा, जैसे जैसे कृष्ण है उसका प्रतिबिंब मौन में होगा, एक ऐसा ही ये दर्पण है जो सब प्रकार के कृष्ण के भावों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है, और दूसरा ऐसा कोई भी दर्पण नहीं। यशोदा जी के दर्पण में वात्सल्य रस का ही केवल छाया आएगा, सखाओं में सख रस का है, जो जैसा है वैसा ही, तथापि स्वच्छता तार बाड़े क्षणे खने, तथापि क्षण क्षण में उनकी स्वच्छता बढ़ती, कैसे कृष्ण को देख करके उन माधुर्यों का आस्वादन करके, अमार माधुर्य नहीं बारिते अवकाश, हमारे माधुर्य में कोई भी अवकाश बढ़ने का नहीं है, बंसी बजाते हैं अद्भुत अद्भुत भय। अब उसे अद्भुत क्या बजाएंगे? रूप है उनका किशोर रूप। हाँ एक बात है, वही किशोर रूप में मान लिया कि सखाओं के पास है, उसे कुछ बढ़ करके बासल यशोदा जी में, और उनसे भी बढ़ करके सखियों में, सखियों में एक एक से बढ़ते 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 उनका माधु। राधा जी में चरम है, तो वो उसका अवकाश नहीं है, एक सोना है। सोना बढ़ करके क्या बढ़ेगा? सोना से बढ़ जाएगा कुछ नहीं, आगे बढ़। एक पीतल है कि कोई एक धातु है, एक व्यक्ति है, क्या बढ़ेगा? किंतु हमार माधुर्य नहीं पारिते अवकाश, एक दर्पण है आगे नौ नौ रूपे भाष, किंतु एक ऐसा दर्पण है जो हमारा माधुर्य नौ नौ नए नए रूप में विकसित हो। एक दर्पण है, दर्पण में मैं अपने एक देखा कोई चीज एक रूप में देखते हैं, एक तीन कोण का शीशा होता है, देखा है कभी? मोटा होता है, उसमें रंग बिरंगी चीजें दिखती है, एक ही चीज का प्रतिबिंब लगा दिखता है, इसमें रंग बिरंगी चीजें दिखती, साधारण कांच में नहीं दिखेगा। तो उसी तरह से कृष्ण एक होने पर भी उनका किशोर रूप भी है, और उसे क्या बढ़ेगा? तभी ये दर्पण ऐसा है नए नए रूप में दिखता। अभी हम नंदगांव जाएंगे ना कि बरसाना में, बरसाना में एक मंदिर देखेंगे तो इधर भी दिखता है लंबे, यहां से राधा कृष्ण बैठे हैं 50 साल, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सब जगह वो दिखते हैं। वो कांच लगाने की एक कला है, हर बार नहीं बनाते, किंतु हीरा में यही विशेषता है। क्या हीरा में विशेषता है? कांच में एक चीज दिखेगा किंतु हीरा के एक एक टुकड़े में कितने